थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यूहन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
सहारा मुझे को चाहिए। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मुहरों को खोल रहे हैं। तो मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य और सत्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठकर एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि प्रत्येक जब आपके वचन में से सुनता है तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक प्रकार की कमी घटियों को, त्रुटियों को उनके जीवन से दूर करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आपका वचन सामर्थी है जो हमारे शरीर के अंग अंग और गुदे गुदे को छेद डालता है। आप बातचीत करें और अपनी आशीष प्रत्येक के जीवन में प्रदान करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम सब देख रहे थे कि प्रभु यीशु परमेश्वर से पुस्तक लेकर उसकी मुहरें खोलता है, क्योंकि पुस्तक की मुहर खोलने के योग्य एकमात्र वही है। वह यहूदा के गोत्र का सिंह और वध किया हुआ मेमना है। उसने एक एक करके चार मुहरें खोली हैं, जिसे हमने देखा है। पहली मुहर खोलने पर एक श्वेत घोड़ा अपना सवार लेकर निकला, यह ख्रिस्त विरोधी था। दूसरी मुहर खोलने पर एक काला घोड़ा निकला, यह विश्वव्यापी अकाल और विलाप का प्रतीक है। तीसरी मुहर के खुलने पर लाल घोड़ा निकला, जो विश्व युद्ध का प्रतीक है। चौथी मुहर खुलने पर पीला घोड़ा निकला, जो पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या के नष्ट होने का प्रतीक है। मेरे प्रियो, अब प्रभु यीशु पांचवी मुहर खोलता है। तो आइए देखें, पांचवी मुहर का खोला जाना शहीदों की प्रार्थना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। मेरे प्रियो, यह वेदी स्वर्ग में है और स्पष्टता यहीं पर प्रभु यीशु ने जगत के पापों के लिए अपना लहू चढ़ाया था। मैं यह मानता हूं कि उसका वास्तविक लहू स्वर्ग में है। मैं इसकी पुष्टि इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय उसके 23 और 24 पद से करता हूं। लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दिए। मेरे प्रियो, ये आत्माएं जिनका यहां पर वर्णन किया जा रहा है, पुराने नियम में पवित्र जनों की आत्माएं हैं, जैसा प्रभु यीशु लुकार के सुसमाचार 11 अध्याय उसके 50 और 51 पद में कहता है, ताकि जितने भविष्यद् वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकर्या की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं, इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। मेरे प्रियो, इनके साथ महाक्लेश में मारे जाने वाले भक्त भी हैं, जैसा हम देख चुके हैं कि पृथ्वी की चौथाई जनसंख्या नष्ट की जाएगी। वे पुराने नियम के दृढ़ आधार पर खड़े परमेश्वर की पवित्र व्यवस्था पर निर्भर न्याय की याचना करते हैं। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 11 पद में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। दूसरे शब्दों में महाक्लेश के पवित्र जन पुनरुत्थान में पुराने नियम के युग के भक्तों के साथ होंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे 6वीं मुहर का खोला जाना, प्रकोप का दिन आया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, जब उसने 6वीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलाकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मेरे प्रियो, यह स्पष्ट रूप से महाक्लेश के अंतिम अर्धभाग का आरंभ है। उसके प्रकोप का महान दिन हमारे सामने है। महाक्लेश इन प्राकृतिक आपदाओं से आरंभ होता है और अंत भी होता है। पहली बात हम देखते हैं, महाक्लेश का आरंभ। यदि हम तुलना करें तो योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 30 और 31 पद और प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 20 पद में, तथा दूसरी बात हम देखते हैं महाक्लेश का अंत, योएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय उसके 9 से 17 पद, यशाया की पुस्तक 13 अध्याय उसके 9 से 13 पद और 34 अध्याय उसके 1 से 4 पद में, और तब मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 29 पद में हम इसे देखते हैं। आज भूकंपों में वृद्धि इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है, यह तो महाक्लेश के युग में ही होगा। परंतु रोचक बात तो यह है, विगत वर्षों के भूकंपों से पृथ्वी की जनसंख्या बहुत कम हुई है। प्राध्यापक आर ए डेली लिखते हैं, पिछले 4000 वर्षों में भूकंप के कारण 1,30,00,000 जाने गई हैं, परंतु सबसे भयानक झटका तो अभी लगने वाला है। एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी ना आया था। इसे हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं। मेरे प्रियो, यह कैसा दृश्य हमारे सामने रखा गया है। आज तक के भूकंप इस भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है, वे केवल इस तथ्य का प्रमाण है कि परमेश्वर ने कहा है तो होगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय के 14 पद में आगे लिखा है, आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। मेरे विचार में इस पद को शब्दशः स्वीकार करना होगा। हम यही दृश्य नाहुम की पुस्तक 1 अध्याय के 5 पद में और 20 अध्याय के 1 पद में व्यक्त किया हुआ पाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 6 अध्याय उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। मेरे प्रियो, पृथ्वी के निवासी चट्टानों और पहाड़ों से याचना कर रहे हैं कि उन पर गिर जाएं, गिर पड़ें, क्योंकि वे छिप जाना चाहते हैं। वे किससे छिपना चाहते हैं? मेमने के प्रकोप से। यह परमेश्वर के प्रकोप का महान दिन होगा। लिखा है मेमने के प्रकोप से। यह एक असंगत बात है। परमेश्वर का प्रकोप यहोवा का दिन है, जिसकी चर्चा पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने की है। यह एक भावी दिन है। इसी दिन को मेमने का प्रकोप भी कहा गया है। यह एक असामान्य कथन है। मेरे मित्रों, बाइबल में ऐसे अनेक असंगत कथन हैं। ये प्रचलित विचारधारा के साथ मेल नहीं खाते हैं, अतः ये विरोधाभासी प्रतीत होते हैं। यह सतही है, जबकि निकट निरीक्षण से ज्ञात होता है कि यह तथ्य पर आधारित है। उदाहरण के लिए, कोई वस्तु आपकी आंखों से दूर जाती है तो बड़ी होती जाती है। यह बात असंगत लगती है, क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो वह छोटी दिखाई देती है। एक गैस का गुब्बारा ऊपर जाता है तो आपको छोटा दिखता है, परंतु यथार्थ में हवा की सघनता कम होने के कारण वह बड़ा हो जाता है। इसी प्रकार कहा जाता है कि आप सूर्य के जितना निकट जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी, परंतु पर्वतों की चोटियां जो आपकी तुलना में सूर्य के अधिक निकट है, उन पर बर्फ जमी होती है। अतः कुछ असंगत बातें सच होती हैं। इसी प्रकार मेमने का प्रकोप है। मेमना प्रभु यीशु का प्रतीक है। अब यदि एक दीन एवं विनम्र मेमना क्रोधित हो तो क्या होगा? यह वैसा ही है जैसे चाय के बर्तन में उबाल आना। हाबिल के समय से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के समय तक प्रभु यीशु को मेमना कहा गया है। प्रेरित यूहन्ना उसे कहता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय उसके 8 पद में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने मेमने को इसलिए नहीं चुना कि उसमें मसीह यीशु के गुण थे, न ही उसने उसे इसलिए चुना कि उसकी बलि चढ़ाए। परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया कि प्रभु यीशु का चरित्र चित्रण करे। जी हाँ, प्रभु यीशु वह मेमना है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है, इससे पहले कि किसी भी मेमने की सृष्टि की गई थी। प्रभु यीशु मसीह में मेमने के गुण हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 और 29 पद में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। वह दीन था। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 14 पद में लिखा है, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसो ही का है। वह किसी प्रकार की हानि नहीं करता है। आप कहीं लिखा हुआ नहीं देखेंगे मेमने से सावधान, परंतु आप पाएंगे कुत्तों से सावधान। तो ये बहुत जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, कुत्तों से सावधान। किसी भी घर में आप जाएं तो अधिकतर आप इसे लिखा हुआ पाएंगे। परंतु वह अति दीन था। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पांव धोए थे। यह एक बहुत बड़ी बात है। वह एक ऐसा मनुष्य था जिसका जीवन मनमोहक था। उसका जीवन एक अति कोमल फूल के इत्र के समान था। उसका आगमन एक स्तुति गान था। उसका यहाँ रहना आशीष का कारण था। उसका प्रस्थान आशीर्वाद था। यहाँ तक कि अविश्वासी संसार भी उसकी ओर आकर्षित होता था। मेमना उसकी बलि को प्रदर्शित करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय के 8 पद में अब्राहम ने कहा था कि परमेश्वर स्वयं ही मेमने का प्रबंध करेगा, और परमेश्वर ने मेमने का प्रबंध किया। मेरे मित्रों, अब उसके प्रकोप के बारे में क्या कहें? प्रकोप तो परमेश्वर के लिए भी एक अस्वाभाविक बात है। परमेश्वर भलाई से प्रेम करता है, परमेश्वर बुराई से घृणा करता है। उसकी घृणा हमारे समान नहीं है। जी हाँ, वह बदला नहीं लेता है। परमेश्वर धर्मी है, वह पवित्र है, और वह उन सब बातों से घृणा करता है जो उसके विपरीत हैं। वह कहता है कि यहोवा युद्ध करने वाला है। वह सामर्थी और सर्वशक्तिमान है। वह युद्ध में सामर्थी है। सुसमाचार में परमेश्वर का प्रकोप प्रकट है। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 18 पद में पाते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, हमारे इस संसार को देखें जिसमें आप और मैं रहते हैं। यह तो परमेश्वर के क्रोध को पहले ही प्रकट कर रहा है, परमेश्वर के दंड को प्रकट कर रहा है। मेमने और क्रोध को साथ करना ऐसा ही है जैसा आग और पानी को साथ रखना। परंतु परमेश्वर के क्रोध की अग्नि मेमने में प्रकट है। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर था, तब उसने कोड़ा बनाकर मंदिर से सर्राफों को बाहर निकाला था। क्या वह व्यर्थ ही यह सब कुछ कर रहा था? उसने धर्म गुरुओं को सांप के बच्चे कहा था, चुना फिरी हुई कब्रें कहा था, उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 21 पद में उसने कहा, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए। प्रभु यीशु ने यरूशलेम को त्याग दिया था, परंतु उसकी आंखों में आंसू थे। वह आज भी प्रकृति की शक्तियों को नियंत्रण में रखता है और उन्हें दंड के लिए काम में लेता है। परमेश्वर ने पाप के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। मैं कहता हूं उसका नाम धन्य है। वह उससे कभी समझौता नहीं करेगा जिसके कारण मानव जाति में ऐसा विनाश आया है। वह दिन आने वाला है जब मेमने का प्रकोप प्रकट होगा। अब कोई कहेगा, मैं तो सोचता था कि वह दीन है और पाप का दंड नहीं देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 2 उसके 10 और 12 में, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो, पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, हमारा परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है। कहने का अर्थ है कि वह पाप से घृणा करता है, परंतु पापियों से प्रेम करता है। और यही कारण है कि वह इस जगत में आया और परमेश्वर का मेमना बन करके उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके उस बहुमूल्य लहू के द्वारा से, जिसे उसने आपके और सारे जगत के पापों के लिए कीमत के रूप में चुका दिया, ताकि आपको पाप से छुटकारा मिले। सिर्फ प्रभु यीशु है जिसके द्वारा आप पापों से छुटकारा पा सकते हैं, उद्धार पा सकते हैं, और यही कारण है कि उसका कोप भड़कता है। और इसलिए नहीं कि वह आपको नाश करे, परंतु इसलिए कि वह पाप से घृणा करता है। वह दीन है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, परंतु वह न्यायी है और वह आपका भी न्याय करेगा। मेरे प्रियो, क्या ही धन्य वह प्रभु है जो आपसे मुझसे प्रेम करता है और चाहता है कि हम अपने मनों को फिराकर उस सामर्थ्य परमेश्वर की ओर लौट आएं। आज आपके पास समय है कि आप उसकी ओर लौट आएं, क्योंकि वह चाहता है कि आप उसके निकट रहें। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
एक बार मसीह मुझको जरा दिल में जगा दे दे, एक बार मसीह मुझको जरा दिल में जगा दे, भटके हुए राही को सही राह दिखा दे, एक बार मसीह मुझको जरा दिल में जगा दे।